आयतों के बदले में कीमत थोड़ी ना खरीदो, बड़ी अहम बात है, इसको जरा सा नोट कीजिएगा। ये जो बा है ना, ये क्या है? पीछे आपने इसे मिलती जुलती आयत पढ़ी है, वलाइकल्लज़ी नश्तरउद दलालता बिल हुदा। देखिए, जब खरीदो फरोख्त होती है, वहां भी थोड़ी सी बात की थी, यहाँ थोड़ा डिफरेंट एंगल है। गिव एंड टेक होता है ना, आपने पैसे दिए, ब्रेड ले ली, करेंसी क्या हुई आपकी जो आपने दे दी, खरीदा क्या, ब्रेड खरीदी। आप देखते हैं ये ब्रेड वाकई इतने की थी, लेके आ गए। पीछे क्या बेच रहे थे लोग, हिदायत, खरीद क्या ले रहे थे, गुमराही। यहां नोट कीजिए, बहुत बारीक बात है, बिया याती, ये जो बा के बाद का लफ्ज है ना, आप लिखिए ये करेंसी है। बहुत दिल कांप जाएगा आपका सुनकर। जब हम कुछ खरीदने जाते हैं तो कुछ देते हैं ना, कोई सोना बेचता है, कोई चांदी देता है, कोई अपनी घड़ी उतार के दे देगा, फिर कुछ खरीदेगा। ये लोग गए थे दुनिया का थोड़ा फायदा खरीदने, पे किस फॉर्म में करके आए, आ जाती। यानी इन्होंने अल्लाह की आयतों को करेंसी बना लिया। अल्लाह की आयतें रखो तुम और हमें दे दो समनन कलीला। समझ आया जुमला? ये क्या होता है? देखिए, लफ्ज कलील आया इधर, और समन, समन से ही लफ्ज समीना भी है, समीन भी होता है, कीमत को कहते हैं, वैल्यू को कहते हैं। कलीलन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अरबी जुबान में, किसी चीज की कमी को इस्तेमाल करने के लिए लफ्ज कलील भी होता है और बख्स भी है। बख्स कहते हैं चीज है ज्यादा कीमत की, लेकिन आपने कम पे खरीद ली या बेच दी। मतलब 500 का जोड़ा आप कहते हैं हमें 200 में दे दें, क्या पता चला कि इस बड़ी वैल्यू की चीज छोड़ी कीमत में ले गए आप। कलीलन के लफ्ज में क्या है, जितना भी लिया थोड़ा लिया। अगर यहां ये होता ना समनन बख्सन, तो मुराद क्या था कि आयतों को भारी कीमत पे बेच सकते हैं, लेकिन लोगों ने थोड़ी पे बेच दिया, तो ये नहीं आया। क्या कहा? समनन कलीलन, के आयतों को किसी कीमत पे भी नहीं बेच सकते। सवाल पैदा होता है, ये कहाँ बिकती है भाई? आप आयत ले जाएं और जाके के मुझे एक ब्रेड दे दें, कोई देता है? नहीं। असल में ये है वो मजाक जो दीनदारों ने किया और अल्लाह के दीन को नुकसान दिया। बहुत सारे लोग नासमझी में इस आयत से क्या कहते हैं, देखो देखो फलां कुरान पढ़ाते हैं और कहते हैं कि हम आपसे पैसे लेंगे, तो वक्त मतलब कितना गलत काम कर रहे हैं कि पैसे लेते हैं पढ़ाने के, और मौलवी साहब है और कह रहे हैं मैं आऊंगा पढ़ाने लेकिन फिर पैसे लूंगा। कई लोग पढ़ाने को पैसे की बजाय क्या कहते हैं, हदिया, तोहफा दे रहे हैं माल में। ये आयत उस पर नहीं है। देखिए, ये आयत आयतों के मानी बदलने पे, आयतों का मफहूम चेंज करने पे है। यानी कुरान की आयत कुछ और कहती है, लोग कुछ और पसंद करते हैं, आप उनको खुश करने के लिए आयतों के मानी बदल देते हैं। और यहां से ये भी पता चलता है कि जब दीन का काम मुफ्त के तौर पे लोग कराने लगते हैं ना, आम तौर पे, तो क्वालिटी नहीं रहती। आज हमारी मस्जिदों का हाल फंड रेजिंग और चंदों पे क्यों है? आज हमारे इदारों का हाल इतना बुरा क्यों है कि कभी छत टपकती है तो कभी कुर्सी टूटी हुई पे आपको बिठाते हैं, क्योंकि हमने कहा कि इसको मुफ्त कर दो। हालांकि आप देखिए, एक इमाम है, 5 वक्त नमाज पढ़ाता है, और अगर वहां की कुछ एक्टिविटीज को देखता है तो वो एक फुल टाइम काम है, और इसी तरह से दूसरी बातें हैं। तो पहली चीज इस पे गौर करने से समझ आती है कि इस्लामी इदारों को सेल्फ फाइनेंस्ड होना चाहिए, चंदा सिस्टम खत्म होना चाहिए। जब जरूरत पड़े तो बताते हैं लोगों को कि ये प्रोजेक्ट आ गया, अगर आपका दिल चाहता है अपना हिस्सा डाल लें, शेयर डाल लें, नहीं है तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात इससे क्या पता चलती है, यहाँ आपको मैं एक छोटा सा फर्क अभी से बता दूं जो आगे जाके आप देखेंगे। हर दौर में कौमों के पास जो नबी आए ना, वो अल्लाह के चुने हुए लोग थे, ये तो आप सभी मानते हैं ना, फिर लोगों ने उनकी मुखालफत क्यों की? सवाल समझे? लोगों को तो फिर उनका शुक्र गुजार होना चाहिए। इसलिए मुखालफत की कि रसूलों ने उस दौर में, उस मुआशरे में जो सबसे बड़ी खराबी थी ना, उस पर तनकीद की। मसा कौम शुएब, हजरत शुएब ने आकर किस चीज पे तनकीद की? नाप तोल में कमी पे। हजरत शुएब अगर नाप तोल की कमी का जिक्र ना करते तो ही विल बी मोस्ट पॉपुलर पर्सन ऑफ देम। आप पढ़ेंगे सूरत आराफ में आता है, वो कहेंगे कि तेरे पर तुम्हारी बड़ी नजरें लगी हुई थी, तू बड़ा अक्लमंद है, ये क्या बेवकूफियों में आ गया। तो अगर वक्त का नबी, और आज के लिए लिखिए वक्त का मुबल्लिग, अगर कुरान की आयतों का मानी बदल दे या फिर उनको छुपा ही दे कि आज के दौर में ये बातें ना करो क्योंकि पीपल आर नॉट रेडी टू लिसन दिस, तो ये है ला तश्तरू बी आयाति समनन कलीला। हक की कीमत देनी पड़ती है क्या? क्या आप लोगों को हक सुनाकर अपनी पॉपुलैरिटी को कम करते हैं? हेड काउंट कम हो जाता है, लोग कहते हैं कम लोग जाना, ये वहाबी हैं, ये पता नहीं कौन है, और आपके साथ लोगों की वो एफिलिएशन नहीं रहती। आज एक दीनदार के सामने यकीन करें सबसे बड़ा महाज ये होता है, जब आप चंदों पे अपने इदारों को चलाते हैं ना, उसके दो बड़े नुकसान होते हैं। नंबर एक, जिसका चेक बड़ा उसका कंट्रोल है, ये हमारी मस्जिद है, ये हमारा इदारा है, हम चंदा देते हैं, अब हमारी मर्जी है, हमें भी इधर की सरदारी दे दो। और दूसरा नुकसान क्या है, उस इदारे में आने वाले स्पीकर, इमाम, मुफ्ती, उनको आप गाइड करते हैं कि ये मसला बताइएगा और ये ना बताइएगा। इन आयतों को जस्ट स्किप है, बस इनको ऐसे ही गुजार दें। मैं ऐसी मस्जिदों के नाम जानती हूँ, इस मुल्क की बात नहीं है, सिर्फ एक इमाम को इसलिए फायर कर दिया था कि उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी पे बात की थी। क्यों? क्योंकि वहां आने वालों में अक्सर इस तरह की खराबियों में मुबतला थे। वो कहते हैं आप ये बातें क्यों लाते हैं? कई आलिम में वो कहते हैं हम जरा सा उम्मत की बुराइयों पे बात करें तो हमें मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, आप ये बातें क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं पता गैर मुस्लिम भी सुनते हैं आपकी स्पीचेस, और वो कहेंगे जी के इनमें ये खराबी है, तो भी आप करना छोड़ दें। आयतों का कीमत क्या है? क्या आप अपना अमल ना छोड़ें लेकिन आयतों को छुपा लें। और फिर देखिए भाई, या फत्तकून, यहां अब तकवा का लफ्ज आया, बस मुझसे ही डरो। क्यों? इंजाम सोच लो, तकवा का मानी क्या बताया था आपको? ऐसा डर जो इंजाम को सामने रख के आए, यानी तुम्हारा इंजाम बहुत बुरा होगा। फिर आगे देखिए, वला तलबिसुल हक बिल बातिल, हक को बातिल के साथ ना मिलाओ। ये क्या होता है? आधी बात इधर की आधी बात उधर की। लबिसा से मिलता हुआ लफ्ज कभी आपने सुना या बोला? हम खवातीन तो बहुत ही बोलती हैं, लिबास, लबसा यलबिसु लिबासुन। क्या होता है? एक के ऊपर दूसरी चीज को लगाना। जब हम लिबास पहन लेते हैं तो हमारे जिस्म के ऊपर जो भी ऐब है या कोई हमारी खाल है वो छुप जाती है ना, बिल्कुल यही मानी है, मिलते जुलते मानी है। लबिसा सौब कहते हैं उसने कपड़ा पहन लिया, लबिसा अमरु अलैहि कहते हैं उसने मामले को गुड़मुड़ कर दिया। ठीक है, ये सूरत अनाम आयत 56-65 में भी इस्तेमाल हुआ है। और यल बिसकुम शिया, लबिसा शयिन का मानी होता है एक चीज को दूसरी के साथ हलत मलत कर देना, गुड़मुट कर देना। यहां क्या समझ आ रहा है? हक को बातिल के साथ मिक्स्ड अप ना करो। देखिए जरा आयत पे, वला तलबिसुल हक का बिल बातिल, इतनी बात तो समझ आ गई, हक को बातिल से ना मिलाओ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें ना करो। तलबीसे हक कहते हैं, इमाम जोसी की बहुत बड़ी मारूफ किताब है तलबीसे इबलीस, वो भी यही है। इबलीस कोटिंग करता है, अच्छी चीज को बुरा और बुरी को अच्छा करके बताता है। और यकीन करें कि दीनदारों में ये खराबी इतनी आसानी से आती है, आम लोग समझ ही नहीं पाते। कुरान बयान किया जी उन्होंने, 30 आयतें कोट की थी इस बारे में, आम लोग समझ नहीं पाते कि किस तरीके से इधर से बात इधर। और इस पे खास तौर पे तलबीसे हक में मसलक को सेव करना, अपने इमाम साहब के फतवे को सेव करने के लिए, जो तलबीसे हक की मिसालें अभी नहीं मैं आपको दूंगी, सूरत निसा में दूंगी इंशाल्लाह, वहां भी ये मौजू आएगा। हर एक के हाथ में कुरान ही होता है, लोग इस कुरान से रफुल जदैन भी साबित करेंगे और लोग इसी कुरान से रफुल जदैन का रद्द भी साबित करेंगे, लोग इसी कुरान से 11वीं का खत्म भी साबित करेंगे और लोग इसी कुरान से कूंडे भी साबित करेंगे, लोग इसी से सीना कूबी भी साबित करेंगे। यानी किसी शिया से लोगों ने पूछा कि आप ये सीना क्यों पीटते हैं, तो आप कहता है कि उन्होंने सूरह ज़ारियात की एक आयत पेश की कि हजरत इब्राहिम के पास जब फरिश्ते खुशखबरी लेकर आए तो उनकी बीवी जो थी उसने ऐसे किया। कहते हैं देखो कुरान में वो किया था, तो हम भी कर सकते हैं। हर एक के बस दलाइल है, लोग इसी से आज के दौर में जिहाद को फर्ज भी करार दे देंगे और लोग इसी से आज के दौर में जिहाद को बिल्कुल कंडेम भी करेंगे। तो इसके लिए मेरे आपके पास एक मेयार होना चाहिए, हक, इल्म आपके मेरे पास हो, फिर इंशाल्लाह आपको मुझे इससे बात का फायदा होगा। चलिए, व तख्तुमुल हक का, ये क्या हो गया, और हक को छुपाओ। आप देखिए, आम सहमत में आप तर्जमे में गलती करेंगे इधर, इसलिए आप गौर से देखें। तख्तुमुल हक आया है कि तुम हक को छुपाओ, नहीं, इसमें वो ला लगी हुई है पीछे। जिनको इंग्लिश की थोड़ी सी समझ है ना, आप क्या कहते हैं, नॉर और नीदर, समझ है आपको जुमले की? किसी एक जुमले में दो बातें ना की हो तो आप कहते हैं आई विल नीदर डू दिस और नॉर दिस, या नॉर पहले लगा ले नीदर ऐसे, मैं ये भी नहीं करूंगा और वो भी नहीं करूंगा, यहां बात है। तो यहां आप कह लीजिए कि नीदर नहीं है, वजह ये बयान है, कलाम शुरू हो गया था ना, बयान उमा सबका कबल, इससे पहले जो बात गुजर गई थी वो है। या मुराद बता के हक को बातिल से ना मिलाओ, हक को छुपा कर। तो यहां एक छुपी हुई ला लगा ले ताकि तर्जमा गलत ना हो आपसे। और ये बात क्या है कि अपने मसलक, अपनी कौम, अपनी खास स्कूल ऑफ थॉट को साबित करने के लिए तुम अपने आप को गुनाहगार ना करो। बहुत सारे लोग दीन की खिदमत करते हैं लेकिन असल में वो अपने मसलक की खिदमत करते हैं। अनवर कश्मीरी साहब का एक मैंने एक वाक्य पढ़ के पिछले सालों में सुनाया था, बहुत बड़े आलिम थे फिकह हनफी के, और जब अपने डेथ बेड पे थे तो कोई उनके दोस्त जो भी हनफी आलिम ही थे वो आए तो उनको मिलके कहने लगे, दोस्त जिंदगी जाया कर दी। तो कहने लगे, भाई तुम्हारी जिंदगी अगर जाया है तो फिर काम किसकी आई है, तुम्हारा तो सारी जिंदगी का मिशन ही दीन और इस्लाम था। तो उन्होंने कहा, नहीं, अब मुझे अपनी बीमारी के दिनों में एहसास हो रहा है कि मैंने सारी जिंदगी, हमने जो भी दीन का काम किया है उसमें लोगों को दीन देना लेना एक सानवी चीज थी, लेकिन बाकी मसलकों पे फिकह हनफी की छाप लग जाए, ये हमारा गोल था। मसलन कोई तबलीग से है ना तो वो कहेगा कि बस लोग तबलीगी जमात ज्वाइन कर लें, हमारा तो ये मकसद है एंड पे हर बात में, ये कि हमें ज्वाइन कर लो, चिल्ला काट दो। हाँ, कोई कहे हमारे रुकन बन जाओ, कोई जमात, इस पे एक घंटा बात हो सकती है जो मैं नहीं करूंगी। आज की उम्मत मुस्लिमा की तलबीसे हक बिल बातिल और तख्तमुल हक में तीन तफसीरें हैं मेरे पास इसकी। हक को बातिल से ना छुपाओ, यानी आयतों को आउट ऑफ टेक्स्ट ना पेश करो। आज के दर में सूद हलाल है, एक घर ले लो, चलो एक मस्जिद नहीं ले सकते, घर ले सकते हो। कोई कहता नहीं घर ले लो, मस्जिद ना लो क्योंकि वो अल्लाह का घर है। कोई कहता नहीं मस्जिद होगी, नमाज तो पढ़ेंगे ना लोग, चलो सूद पे एक मस्जिद ही ले लो। कोई कहता बस एक अपना घर ले लो, बस एक किराए पे दे देना। चौथा आलिम कह देगा आप अपना भी ले लो और अपने चार बेटों के नाम पे चार घर ले लो, ये है तलबीस हक। इससे कड़वी बात आपको मैं क्या सुनाऊं, हैंकी पैंकी, इधर की उधर की। भाई कुरान कहता है कुलू कौलन सदीदा, आपकी कब्र में मैंने नहीं, मेरी कब्र में आप में नहीं जाना। आप 10 दफा भी मुझे आके कहेंगे ना कि आज के दौर में सूद हलाल है कि हराम, तो मैं अल्लाह की कसम कहूंगी हराम है, उतना ही हराम है जितना नबी के दौर में हराम था। मक्का में रहते हुए भी हराम है, मदीना में भी हराम है, नॉर्वे में भी हराम है, अमेरिका में भी हराम है, कनाडा में भी हराम है, ऑस्ट्रेलिया में भी हराम है, मैं कहूंगी ये बात। आप आते हैं, आए नहीं आते तो मेरा क्या लगे, मेरी कब्र मैंने क्यों खराब करनी है। लोग कहते नहीं, मैंने खुद ऐसी बातें सुनी है, मेरे पास हवाले मौजूद है, कई दीनदार कहते हैं फिर हम ये बातें करें तो जो चार लोग मस्जिदों में आते हैं वो भी नहीं आएंगे। आप कहते हैं हम आपका ये हॉल यूज कर सकते हैं, मैं कहती हूँ कर सकते हैं, बिस्मिल्ला कीजिए, तावन अल बिर व तकवा, आप आइए हक तकवा के साथ लीजिए। आप कहते हैं हम अपनी बच्ची की शादी कर लें, बाहर तो बहुत मुश्किल है, इतने पैसे लगते हैं, क्या हम ये आपका हॉल साफ कर करा देंगे, ये आप देखिए आपको स्कूल वाले कहेंगे आप करें। आपको इधर अकीका करना कर लें, बिस्मिल्ला कर लें। और कोई आदत है कि हम जरा आके यहाँ कुरान खानी करा लें, हम यहाँ जरा मिलाद में आके खड़े होकर सलात तो सलात दुरूद पढ़ लें, तो सॉरी, तावन अल बिर व तकवा वला तावन अल इस्मि वल उदवान, बात वाजे है। वजह के अल्लाह ताला कहते हैं हक को बातिल से ना मिलाओ। और दूसरे के नहीं, फिर हम अपनी मस्जिदों में इजाजत देते हैं, कई मस्जिदें ऐसी हैं कभी वहां ये काम नहीं हुए थे, अब होने लगे। मुझे किसी ने ये बात सुनाई, भाई इमाम साहब आपकी मस्जिदों में तो ये काम पहले नहीं होते थे, अब क्यों हो रहे? यार क्या करें, प्रेशर बहुत है, फिर मेंबर भी तो है ना अपने। वल्लाही अल्लाह मुझे आपको हमेशा सीधा सीधा दीन सीखने वाला बनाए। इतनी खराबियों का जिक्र करके कावा की मुसलात तवातु ज़कात वरक मराकिन, पहले किरदार साजी ये दीनदारों के, फिर नमाज रोजा फायदा देगा। नमाजें तो वो पढ़ते ही हैं, इसलिए शुरू में नहीं कहा। अगर इधर आम यहूद का जिक्र होता ना, दुनियादार यहूद, तो फिर यहां शुरू में ही आ जाना था कि मुसलात और फिर बात करो। क्या बता दिया कि तुम्हारी नमाज रोजा जकात भी तब फायदा मंद होगी जब तुम ऊपर से ये इल्मी खियानते और दीन की जो जिम्मेदारी है उसको समझाओ। आज बहुत गैर संजीदगी और गैर हिकमत के साथ दीन की तबलीग हम कर रहे हैं, मैं अपने आप को भी ले लूंगी इसी में, अगर मैं भी ऐसी हूं तो। हम हाईलाइट करते हैं अपनी मर्जी के मसलों को, कोई नेल पॉलिश के मसले को सबसे ऊपर ले जाएगा, कोई दाढ़ी को सबसे ऊपर ले आएगा, किसी की नजर में जिहाद बड़ा इशू बन गया। दीन की तबलीग में भी तरीका रखो। और अगली आयत देखे, तामरून नासा बिल बिर्री व तंसौन अनफुसकुम, तुम लोगों को तो बड़ी बातें करते हो और खुद को भूल जाते हो। ये है दीनदार तबके के ऊपर खुद अपने ऊपर तनकीद। अफसोस के साथ कहना पड़ता है दूसरों के लिए दीन का वो लेवल बताएंगे कि जो रब्बानियत के दर्जे का हो, फर्ज सुन्नत नफिल सब मिला दिए। फुला आलिम है, 40 रातों से ईशा की नमाज के साथ उन्होंने फजर भी पढ़ी, बीच में तहज्जुद पढ़ते रहे, सोए ही नहीं तो वजू नहीं टूटा, बाथरूम में गए नहीं वजू नहीं टूटा। अच्छा जी, फुला आलिम वो एक टांग पे खड़े हैं। देखिए, जब दीनदारों के साथ इतने ऊंचे ऊंचे मेयार आप आम लोगों को दिखाएंगे ना, दुनियादार बेचारे ठुस होंगे। बस एक उस्ताद है, वो अपने क्लास में आने वाले लोगों से कहे, डेफिनेटली मेरी क्लास के 95% स्टूडेंट फेल हो जाएंगे। तो आप मुझे बताइए कि वो 95 रहेंगे क्लास में? वो कहेंगे जब फेल ही होना है तो फिर हम छुट्टी कर लें। आज हमने दीन के नाम पे दीनदारों की इतनी बातें, रिवायतें, कहावतें, ख्वाब में देखा नबी आए। यानी अभी चंद दिन पहले एक व्हाट्सएप पे भी मैसेज किसी ने भेजा कि खाना काबा में एक वो आलिम आए हैं, किसी शहर मुल्क का नाम था, कि जिन्होंने शायद 36 हज किए हैं और कुछ अन कुछ, और उनको ख्वाब में नबी सल्लम ने आकर ये और वो कहा। तो मुझे तो कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि वो बात तो कुरान में पहले ही बहुत आई हुई है, हदीस में आई हुई है, बस समझ गया। तो ये जो ना तामरून नास बिल बिर, दीनदारों का एक सुपर ह्यूमन तसव्वुर। हंस नहीं सकते, बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, बाहर खाना नहीं खा सकते, ताकि सारे बेचारों डीमोरलाइज हो जाए। उफ गॉड, हम नहीं कर सकते। नहीं, फिर यही चार ही ठीक है शहर में। जब भी जनाजा पढ़ाना होगा इनको बुला लेंगे, निकाह कराना होगा इनको बुला लेंगे, दर्ज देना होगा इन बाजी से दुआ करा लेंगे। हम दुनिया के, ये आखरत के, ये गलत चीज़ है। वन तुम तत्लून अल किताब, तुम किताब पढ़ते हो, फला ताकिलून, क्या अकल नहीं है तुम में? सोचो, करो क्या? अब ये सारों का एंडिंग है, मैं खुलासा कर देती हूँ, इस पर डिस्कशन बाद में होगा। वस्ताइन बिस सब्री वसलाह, ये है मेरे आपके लिए जिसको दीन का काम करने का शौक है ना, उसको इलाज बताया गया। वस्ताइन बिस सब्री वसलाह, सब्र से मदद लो। क्या है सब्र इधर? ख्वाहिशों को कंट्रोल करो। नबी का अपना घर नहीं था तो क्या उम्मतियों का घर होना फर्ज है? ना अपना घर होना फर्ज है, ना सुन्नत है, ना नफिल है। तो यहां सबर से मुराद नफ्स को रोकना, हब्स नफ्स कहते हैं। बहुत जगह आगे आना है, मैं सबर के आपको बेशुमार लफ्ज इंशाल्लाह लिखाऊंगी जिंदगी रही तो। लेकिन यहां मुराद है ख्वाहिशों पर काबू पाओ। वह सलात नमाज से खुशू लाओ, अल्लाह का कुर्ब पाओ। वह इन नहा कबीरा तो नीलाशीन, है ये बड़ा भारी बोझल बहुत है मगर खुशू करने वालों को आसान है। अब देखिए यह लफ्ज खाशीन आ गया, अल्लाह की बड़ाई के एहसास से दब जाना। वही बंदा इस दुनिया का रोजा रखेगा जिसके दिल में अल्लाह का खुशू होगा। वो कहते हैं ना, क्या दुनिया यौमन वलना फीही सौमन, ये दुनिया एक दिन की और हमने इसमें रोजा रखा हुआ है। किससे रोजा है? हराम से रोजा, मकरूह से रोजा, अल्लाह की नाफरमानी से रोजा, अल्लाह की नाराजगी से रोजा, पांव पसारने से रोजा। बस गुजारे से चल रहे हैं हम, सामान बांध के बैठे हुए हैं, जब मर्जी फरिश्ता लेने आ जाए हम जाने को तैयार हैं। अल्लज़ीन यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, देखिए जवाब आ गया। कौन है ये खाशीन? जिनकी नजरें आखरत पे लगी हुई हैं, या जन की भी बात करूंगी इंशाल्लाह बाद में, जिनकी इस दुनिया में रहते हुए नजरें आखरत पे। बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे खड़ा एक शख्स तसव्वुर में लाए, इधर ही बना लें बेशक। नजर किधर है? कितने सेकंड रह गए ट्रेन आने में? आवाज आनी शुरू हो गई है, अच्छा आ रही है, अन्ना मुलाकू रबी, और इस ट्रेन में बैठ के अपने रब से मुलाकातें करेंगे। वअन्नहुम इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ हम जाएंगे। पिछले सबक का एंड क्या हुआ था याद है? फइम्मा याती अन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया या फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहसनून वल्लज़ीना कफरू वकज़्ज़बू बिआयाती लाइक असहाबुन नार हुम फीहा खालिदून। उधर वापसी का सफर सिखाया गया था, कि आज दुनिया में भेज रहा हूँ, हिदायत आएगी, किताबें आएंगी, जो सुन के मान लेगा खौफ से पाक है। यहाँ अन्ना हुमिलैहि इमरादी उनसे बताया कि हर इंसान का गोल ये होना चाहिए कि अपने बाप आदम को जिस जन्नत से निकलते हुए देखा कुरान की आयतों की रोशनी में, हम उस जन्नत में चलें। तो जिंदगी इस शऊर से गुजारनी है मैंने आपने कि हम अल्लाह को फेस करेंगे, आई विल फेस माई गॉड, मैं अपने रब को जब मिलूंगी तो क्या होगा। तो हमने क्या देखना है, आखिरत के अंदेशों में जीना है। पूरे अगर आप सबक का खुलासा करें ना, तो आप देखिए कि बनी इसराइल से खिताब है, नेमत और अहद की याद दहानी है। 10 बातें अल्लाह ताला ने इसमें की हैं यहूद के साथ, अगर लिखना है तो लिख लें जल्दी से। किताब पर ईमान लाओ, मेरी आयतों की खरीदो फरोख्त ना करो, बातिल का रंग चढ़ाकर हक को मशकूक ना बनाओ, जानबूझकर हक को ना छुपाओ, नमाज कायम करो, जकात अदा करो, झुकने वालों के साथ झुक जाओ। इस पर भी अभी बात नहीं हुई, ये सब डिस्कशन में इंशाल्लाह हम बात करेंगे बाद में, क्योंकि अगली आयतों का भी टॉपिक यही है। फिर सबर और नमाज से मदद लो और दूसरों को नेकी की तलकीन करो और खुद को ना भूलो। और इसमें हमें कामयाब होने के लिए जो बातें अल्लाह ताला ने जिक्र की हैं, आप देखिए कि रवैये हैं। बज़ाहर तो इसमें हम कहते हैं कि ये यहूद की बातें हैं, लेकिन अल्लाह ने आपके मेरे लिए कामयाबी के इसमें कितने नुस्खे हैं, अगर आप बाद में मेरी बातें सुन के नोट करेंगे ना, 12 पॉइंट्स हैं जो इस वक्त एक उस मुसलमान को, एक दीनदार को याद करने हैं अगर वो कामयाब होना चाहता है। नंबर एक, अल्लाह की नेमत को याद करना, उस गुरु नेमत ही। फिर अल्लाह के अहद को पूरा करो, आप आगे जाके बाद में इनके आयतों के नंबर भी लिख सकते हैं और इजी हो जाएगा, औफु बिअहदी। फिर सिर्फ अल्लाह से डरना, फैया या फरहबून। फिर अल्लाह की वही पर ईमान लाना, आमिनू बिमा उनजल, तो उसी से बोल रही हूँ मैं भी, देख कर आप भी देख सकते हैं, ये सिर्फ मैं आपको सोचना सिखा रही हूँ। फिर अकीमुस्सला, नमाज कायम करना, आतुज़्ज़का, ज़कात दो, वरकाओ, रुकू करो, और अल्लाह की किताब की तिलावत करो, अंतुम तत्लून अल किताब में छुपा हुआ ये लफ्ज़, वंतुम तालमून, सबर और नमाज से मदद लेना, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, और खुशू करना, खाशेन, और यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, रब से मुलाकात का यकीन, और अन्नहुम इलैहि राजिऊन, अल्लाह की तरफ पलटने का यकीन। हमने इसमें कुछ नेगेटिव चीजें देखी हैं, वो 6 हैं, नोट कर लें जल्दी से। नंबर 1, कुफर करना, नशुक्री। फिर अल्लाह की आयतों को थोड़ी कीमत पे बेचना, यानी आयतों के मन माने माने निकालने, हक को बातिल के साथ मिलाना और हक को छुपाना, और लोगों को नेकी का हुक्म देना, खुद को भूल जाना, और अकल से काम ना लेना। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें अकल से काम लेने वाला बना दे। तो यहाँ पे खुलासा पूरा हुआ।